पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक का प्रोग्राम बात हक की।
और इस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ कायनात वक्कार, आपकी सलामती की ख्वाहिश लिए। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक में हमारी आपकी बातें होती हैं इंसानी हुकूक के बारे में। बहुत खुशी की बात है कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात का पहला मरहला खुशसलूबी से अंजाम पाया। दूसरे मरहले में सिंध और पंजाब में मुकामी हुकूमतों का चुनाव 19 नवंबर को होगा, जबकि तीसरे मरहले में 5 दिसंबर को इंतखाबात होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से शहरों की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। इस रुझान की मुख्तलिफ वजूहात हैं। इस इजाफा को मद्देनजर रखते हुए शहरों में तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों की जरूरत होती है। तालीम और सेहत की सहूलियात के अलावा ज़राए आमदोरफ्त की आसान फराहमी के लिए भी इकदामात करना पड़ते हैं। पायदार तरक्की के लिए मुअज़्ज़ज़ सामईन ऐसे इकदामात की जरूरत होती है जिनसे माहौलियाती और तारीखी वरसा भी महफूज व मामून रहे और तरक्की के मराहिल भी तय हो जाएं। इसी मौजू पर सुनिए वकार मुस्तफा की जबानी, सादत अली खान की रिपोर्ट, चिड़िया की आंख से शहर को देखो।
मौसम बेवजह बेमौसम नहीं हो जाते। जब दरख्तों के झुंड से इमारतें उगने लगें, जब धुएं से हवाओं का दम घुटने लगे, जब पानियों पर आलूदगी हुक्मरान होने लगे, तो मौसमों के मिजाज भी बदलने लगते हैं। ऐसा ही लाहौर शहर में इस तारीखी इमारत चौबुर्जी के इर्द गिर्द रहते इन वासियों ने देखा है।
मुगलिया खानदान का एक तारीखी विरसा है। यह चौक वो है जरा पूरे पाकिस्तान च शनाख्त है चाबुर्जी की। असि इतने उम्र गुजारी है, इतने खेडते रहे हैं। एक विरसा है जिन्हों बार दुनिया आके देखती है कि की चीज बहुत वड्डी है। इतबारक होंगी चीज जिसे बच्चे खेडते सन, लोग तफरी कर आते सन, बारों गोरे आते सन, जिदा की कमाई पाकिस्तान गवर्नमेंट नभदी। इतने हल फ्रूट हों बड़ी तफरी सी। असी स्कूलों चो आके खेडना, मल्लेदारी, बड़ा सुकून माहौल। ट्रेन थले भी चल सकती है, ओहदे नाल होर खुशी वरदेगी। लेकिन इस चबुर्जी नूं ना कुछ किया ते चढ़ के खेडदे रहे आ। इत्थे गानी वाला तोता पूरे लॉज किते नहीं इत्थे हैगा। ये साडा घर जज्बाती की है, साडा घर साडे जिस्म दा हिस्सा है। असीं लंदन भी चले जाइए, जद तक इहनूं नहीं देखांगे सानूं ओह सुकून नहीं मिल सकदा। ये ओह रिश्ता जिहड़ा मां दा पुत्तर नाल रिश्ता हुंदा। ये साडी पाक थर जमीन है, ये भी सलामत रहेगा। ये पार्क चला जांदा शाम नगर दे अंदर जिथे पुराना पासपोर्ट दा दफ्तर हुंदा सी। ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਟਾਂਗੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਟਾਂਗੇ ਬੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਲਾਇ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤਫਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਸ਼ੋਰੋ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੱਕ 20-22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ। ਚਬੁਰਜੀਓ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ। ਸਾਹਮਣਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਾਲ ਕਸੂਰ ਊਠਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਚਬੁਰਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਰੋਡ ਨਿਕਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਚਬੁਰਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹਮ ਖੇਲਤੇ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਇਸਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕੀ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਚਬੁਰਜੀ ਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਸਾਫ ਰੱਖਾ ਜਾਏ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਏਕ ਦੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ।
इधर खेलते रहे हैं, हम बैठते रहे हैं, ग्राउंड में घूमते रहे हैं। वहाँ तक तकरीबन आधा किलोमीटर के एरिया में इतना सब्जा और खूबसूरत घास होती थी, फूल होते थे, दरख्त होते थे, बड़ा खूबसूरत नजारा होता था।
नहीं नहीं, रोड बनाए, रोड तो हम नहीं कह रहे कि ना बनाए, लेकिन इसको ना छेड़े, चबुर्जी को ना छेड़े, ये तो ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। वो अगर वो बनेगा, इसको भी साथ बनाए ताकि ये खूबसूरत बने और ज्यादा खूबसूरत लगे। बनाए ट्रेन बनाए, अच्छी बात है, सड़कें बनाए, इसको खूबसूरत करे, लेकिन ये विरासत को ना छेड़े, विरासत को ना गिराए, ताकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम बता सके कि जब थोड़े से बड़े होंगे कि बेटा ये ऐसे होता था। जैसे जाते हैं ना शालामार देखने, शाही किला, ऐसी चीजें दिखाने जाते हैं, बच्चों को बताते हैं वो लोग। अब देखो ना दिल्ली गेट माशाल्लाह कितना, अब जाएं पता चलेगा हाँ भी ये वो ही पुराना आ गया बन गया। ट्रेन के साथ साथ इसकी भी खूबसूरती का आवाम को पता चले, आज के लोग जो है बच्चे हैं जो उनको भी पता चले।
शहरों का जहां जिस्म होता है, हैयत होती है, शक्ल होती है, रूह भी होती है। माहिर तामीरात नैयर अली दादा।
सिटीज हैव ए बॉडी एंड सिटीज हैव ए सोल। दोज सिटीज आर नॉट जस्ट अनदर सिटी, दोज हैव टू बी ट्रीटेड एंड रिस्पेक्टेड एंड डेल्ट विद इन अ वेरी स्पेशल मैनर। जहाँ तक जिक्र बॉडी का हो, वो भी इस एन एलिंग बॉडी, जहाँ पानी जहर आलूद है, हवा जहर आलूद है, ज़मीन इज डिप्लीटेड, द सॉइल इज डिस्ट्रॉयड। तो ये तो जिस्म का हाल है। इंसानों की सोच जो है वो उसकी, ये जो सनफ है आर्ट की, जो सनफ है मौसीकी है, शायरी है, हेरिटेज है, लिटरेचर है, इससे पहचान होती है इंसान की। इसलिए ये दो इंडेंजर्ड एरियाज हमारे हैं। वन इज इकोलॉजी, द नेचर हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड इज अंडर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉयड, एंड द अदर इज कल्चर। उसमें आपके सामने हेरिटेज और सारी वैल्यूज हो। तो द बॉडी एंड द सोल आर बोथ हीलिंग। जो हमारी फिक्र है उसमें बालीदगी मौजूद नहीं, और जो लोग हैं जिनके लिए के शहर बनते हैं, जिनके लिए ज़िंदगी का सारा कॉन्सेप्ट है, दे हैव नो पार्टिसिपेशन व्हाटसोएवर इन द डिसीजन मेकिंग।
शहरी आबादियों में इजाफा एक खतरनाक रुझान है। इमराना टिवाना।
दिस इज ए वेरी सीरियस साइंस दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड लिंक्ड मैनर विच इज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब तक ये लिंकेजेस नहीं बनेंगे ट्रांसपोर्ट और पानी और सड़कें और जोनिंग और लैंड यूज में, एड हॉकिज्म का शिकार होके एक विक्टिम बन जाएगा वो शहर और वो शहरी ऑफ बैड प्लानिंग, विच इवेंचुअली बिकॉज इट इज एट सच ए लार्ज स्केल विल कलैप्स। राइज एज ए नेशन that has exceptional people, exceptional thinkers and professionals. It is about time that we speak collectively about the real issues. My concern is that the human being, wo insaan 93% jo cycle pe, motorcycle pe, jiske paas bus nahi hai, jo rickshaw mein jata hai, jiske paas wagon ki facility nahi hai, jo cheez bhi ki jaye wo ek integrated vision, ek balance, एक कॉन्टेक्स्ट और एक पर्सपेक्टिव से करने की जरूरत है। यहाँ कोई कमी नहीं है आर्किटेक्ट्स की, प्लानर्स की, थिंकर्स की, विजनरीज की, फिलोसोफर्स की। दीज आर नॉट जस्ट रेलिक्स, बट दीज आर वेस्टिजेस, आइकॉन्स ऑफ एसोसिएशन विच गिव अस आवर आइडेंटिटी। हम कहते हैं मेट्रो भी चलाओ और विरसा भी बचाओ।
शहरी आबादियों में इजाफा हुआ तो आलूदगी का रिवाज हुआ, जो पाकिस्तान में सालाना 22,700 अमवात की जिम्मेदार है। जान से जाने वाले इन अफराद में 700 बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों से मालूम होता है कि कम से कम 70% नाक, कान और गले के अमराज आलूदगी के बाइस हैं। क्यों ना हो, लाहौर 121.85 माइक्रोग्राम सतह आलूदगी के साथ अव्वल ठहरा। पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा इसके बाद आते हैं। आलूदगी की महफूज सतह 35 माइक्रोग्राम फी मुकाब मीटर है। मगर ये आदादोशुमार का झंझट भी क्या जरूरी है? क्या उफुक और शफक के मनाजिर वैसे रहे? क्या रातें वैसी तारों भरी रहीं? क्या पैदल चलना, पानी में नहाना वैसा खुशकुन, वैसा पुरलुत्फ रहा? तमाम मंजर धुएं ने ढांप लिए, सब मजे आलूदगी की भेंट चढ़े, और हम हैं कि खुद को बचाने की बजाय मारने की धुन में मगन हैं। डॉक्टर एजाज अनवर।
शालीमार बाग के सामने वाटर वर्क्स था मुगलों का बनाया हुआ, जहाँ 7 वाटर टैंक्स थे। पानी डायरेक्टली शालीमार बाग में नहीं छोड़ा जाता था, एक पॉन्ड में इकट्ठा होता था, वहाँ से ऊपर से ओवरफ्लो करके होके दूसरे में जाता था, फिर तीसरे में। उसके बाद उसको बड़ी एहतियात से शालीमार बाग के पैरापेट वॉल पर ले जाया जाता था, पानी का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करके ग्राउंड में उतारा जाता था। उन्होंने प्रपोज किया था एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट होगा, जिसमें गार्डन होंगे चबूची के इर्द गिर्द, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स होंगी, और उन क्रॉसिंग के दोनों साइड पर छोटी छोटी दुकानें होंगी उसी पैटर्न पे जो कि लोहारी गेट में सक्सेस स्टोरी है। अब वो करने लगे थे, लेकिन बहुत छोटा सा ही उन्होंने बनाया, तो इसको बहुत छोटा इन्होंने राउंड अबाउट कर दिया, उससे ट्रैफिक वाइब्रेशन चुबुजी के बहुत करीब आ गई।
माहौलियाती तरक्की और मुआशी तरक्की का अलहदा अलहदा होना जरूरी नहीं। फौजिया कुरैशी।
मेट्रो मेरे नज़दीक एक बढ़ते हुए शहर के लिए एक ज़रूरतमंद चीज़ है, लेकिन उसको जब तामीर करते हैं तो उसको किसी सोच समझ के माहौल पे क्या असर होगा, इकोलॉजी पे क्या असर होगा, लोगों के रहन सहन पे क्या असर होगा, वेदर इट्स दी हेरिटेज और वेदर इट्स द कॉमन मैनस होम, किस किस पे कितना असर पड़ेगा।
हमें तरजीहात बदलना होंगे, माहौल और वर्से की हिफाजत को हमें तहजीब का हिस्सा बनाना होगा। माहिरे तालीम सलीमा हाशमी।
अगर आप मुझसे पूछें कि जी किस किस्म की तरक्की चाहिए, 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए, तो जिनमें एक इन्हीं 100 रुपए में से साफ पानी, आलूदगी से पाक माहौल, स्कूल, अस्पताल और अपनी शनाख्त, ये चीज़ें हैं जो कि इसमें से आप इनका खर्चा कर सकते हैं। ये सब चाहेंगे या बहुत जल्दी तेज़ी से शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना चाहेंगे। हमें साफ पानी चाहिए, हमें आलूदगी से पाक माहौल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें रास्ते चाहिए, सड़कें चाहिए, लेकिन हमें बहुत तेज़ी से कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि हमने आसपास देखना है कि हमारे आसपास है क्या।
पाकिस्तान कमीशन बरा इंसानी हुकूक के सेक्रेटरी जनरल IA रहमान।
कि जैसा कि यूनेस्को कन्वेंशन है ऑन द प्रोटेक्शन एंड वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज, कि हमारी हुकूमत का ये फर्ज है कि वो हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे और कंजर्व करे, और चूँकि हमारी हेरिटेज ग्लोबल हेरिटेज का हिस्सा है, हम ये समझते हैं कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव है उसमें दखलंदाजी होती है, तो वो भी हकूक पे हमला है।
न जाने क्यों तरक्की का शिकार हमेशा माहौल और तारीखी वर्षा ही क्यों बनता है। हम समझें या ना समझें, ये तरक्की माकूस है। दरख्त जो जाते हैं तो तामीराती मलबा, पानी और हवा की आलूदगी, शोर में इजाफा लाजिम, दमा, जल्दी अमराज, दिल और जिगर का फेल मुतासिर होना, टीबी का फैलाव, सब हमारी किस्मत बनते हैं। दरख्त काटने को तो हम लपकते हैं, मगर लगाने में हमेशा कोताही करते हैं। दरख्तों का उखड़ना ऐसे ही है जैसे हमारे फेफड़ों में सुराख होते जाएं। ऐसा कब तक मुमकिन है भला? सांस नहीं रहता तो जान जाती है। माहिर तामीरात कामिल खान मुमताज।
शहरों की नौइयत में बुनियादी तब्दीली आ चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन का वसीतर आलमी सतह पर अगर आप इसको देखें तो इसके असरात कुर्रे अर्द खतरे में, सकाफती विरसे कल्चर हेरिटेज इसका नुकसान किए बगैर, माहौल पे नुकसान किए बगैर डेवलपमेंट ज़रूर करें। कल्चर जो है ये तर्जुमानी करता है हमारे नज़रियाती अकीदे और फिक्र की। डेवलपमेंट किसी सिमत होती है, किसी नस्बुल ऐन की तरफ होती है। माजी से हासिल करदा विरसा, उसमें से कौन सी चीज़ें काबिल कदर हैं, किसका तहफ़ लाजमी है और किसको ज़ाया किया जा सकता है। इस वक्त सबसे अहम तरीन अलमिया है वो है जो एक माहौलियाती बहरान सारी दुनिया को दरपेश। हर शायद डिवेलप करती है, प्रोग्रेस करती है, लेकिन अपने नॉर्मेटिव स्टेट में आके पहुंच के और फिर कुछ मुद्दत के लिए वो कायम रहती है और उसके बाद उसका दूसरा दौर जो ज़वाल की तरफ है और बिलाखिर वो वजूद से चीज़ निकल जाती है। पहला मौका वो होता है जब कोई भी चीज़ वजूद में आती है। फ्रॉम नथिंग टू एनीथिंग इज एन इनफिनिट ट्रांजिशन। उसके बाद कुछ दौरानिए के लिए वो वजूद में रहती है और दूसरा मौका जब वो इट गोज आउट ऑफ एक्सटिंक्शन। फ्रॉम एनीथिंग टू नथिंग इज द सेकंड मोमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज अप्रोचिंग, बल्कि एक्चुअली अटेनिंग इनफिनिट चेंज।
सोचिए क्या होगा अपने अपने दरख्तों पर आबाद इन परिंदों का जब हम इमारतों के लिए, सड़कों के लिए इन्हें काटेंगे। क्या हम चहचहाहट से, परिंदों के नगमों से, पानी की हयात बख्श रवानी से, साफ हवा की रसानी से हाथ धो बैठेंगे? दरख्तों, पानियों, हवा की जिंदगी खत्म हुई तो हम भी कंक्रीट के इन घरों में जिंदा नहीं रह पाएंगे जो हम इन नेमतों को त्याग कर तामीर कर रहे हैं। आए वही नजर इख्तियार करें जिससे चिड़िया अपने घोंसले से शहर को देखती है।
चिड़िया की आंख से शहर को देखो। सादत अली खान की रिपोर्ट के साथ ये थे वकार मुस्तफा। इंसानी हुकूक से मुतालिक कुछ पैगामात। मकामी सतह पर लोगों के मसले क्या हैं?
ना थे गैस है, ना पानी है, गटर बांधा जगह जगह थे।
हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के जो स्कूल या कॉलेजेस है उनको डेवलप करें, उनके हालत अच्छी करें। सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तानों
का होता है।
इन मसलों का हल अब आप ही के पास है।
सिंध और पंजाब में
मकामी हुकूमतों के चुनाव में हिस्सा लें,
अपने मसले खुद हल करें। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
मैं एक बच्ची हूँ, मेरा और सब बच्चों का हक है तासब ना हो, तशद्दुद ना हो, जिंदगी महफूज और मैयारी हो, सोच मालूमात इजहार की आज़ादी हो, तालीम मिले ऐसी कि सीखे अंत से रहना, माहौल की हिफाजत करना और एहतराम इंसानी हुकूक का। प्रोग्राम बात हक की में FM 101 पर हफ्ता और इतवार की दोपहर 12:30 बजे पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बात हक की, मैं हूं कायनात वकार। पाकिस्तान में खवातीन पर होने वाले मजालिम में सबसे अजियतनाक तशद्दुद तेजाब से झुलसा देना है। इस हमले से चेहरे समेत जिस्म के दीगर आज़ा भी सख्त मुतासर होते हैं। इस जुर्म के खिलाफ सख्त कानून के बावजूद ऐसे वाकयात की तादाद में कमी नहीं आई। इसी पस मंजर में पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने हाल ही में एक सेमिनार का एहतमाम किया ताकि मुल्क में तेजाब हमलों के सदबाब के लिए एक मौसर हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। राबे अली की रिपोर्ट।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक की एक तहकीक के मुताबिक मुल्क में हर साल 150 से 400 के दरमियान तेजाब हमलों का पता चलता है। इनमें से 80% हमलों का शिकार खवातीन होती हैं, जिनमें ज्यादा तादाद 18 साल से कम उम्र की है। मरियम सईद की इस तहकीक के मुताबिक इन हमलों का मकसद आमतौर पर जान से मारना नहीं होता, मगर इनके बाद शक्ल बिगड़ जाती है, बेनाई चली जाती है, सुनने की हिस खत्म हो जाती है, जिस्मानी और जहनी अजियत इसके अलावा है। ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जिनमें खवातीन और लड़कियों पर आपसी रंजिशों के बाइस तेजाब फेंका गया। पाकिस्तान में तेजाब हमले जैसे खतरनाक तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक तेजाब फेंकने वाले मुल्ज़िम के लिए 14 वर्ष कैद और 10,00,000 रुपए जुर्माने की सजाएं मुख्तस हैं। तेजाब हमलों पर कड़ी सजाएं देने से मुतल्लिक ये कानून सन 2011 में मंजूर किया गया था। इस कानून के बहुत से मुस्बत पहलू होने के बावजूद ये काफी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक तेजाब की खुलेआम फरोख्त को रोकने और मुतासर शख्स की तिब्बी नफसियाती और मुआशी बहाली से मुतल्लिक कोई शिक नहीं है। दूसरी जानब तेजाब की खुलेआम फरोख्त पर भी पाबंदी बरकरार है, इसके बावजूद तेजाब हमलों के वाकयात सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान कमीशन बरा इंसानी हकूक के जेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले सेमिनार का मकसद ऐसी सिफारिशात मुरत्तब करना था जिनसे तेजाब हमलों और तेजाब की फरोख्त और तकसीम को मौसर तौर पर रोका जा सके, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और इलाज के मौसर इकदाम किए जा सके, मेडिको लीगल जाँच और मेडिको लीगल अफसरान की रिपोर्टिंग और पुलिस रिपोर्टिंग और तफ्तीश बेहतर हो सके। समाजी रवैयों में तब्दीली के लिए प्रचार की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और तेजाब हमलों में जिंदा बच जाने वालों की समाजी और मुआशी बहाली कैसे हो, इस सेमिनार में शरीक माहिरीन की जानिब से ये इकदाम तजवीज किए गए।
I'm Dr. Saira Afzal and I'm working as chairperson in community medicine department. ACID attack victims reported higher levels of abnormal behaviors like anxiety, stress, depression, and the women reported low confidence and increased embarrassment. There was positive as well as negative feelings. I'm not saying that all the feelings after the post ACID burn are negative feelings. And this is very important because these positive feelings give us the gap where we can fill them with the good life again.
मैं अतीक होगा। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है इसको रोकने की, इसके ऊपर जो है वो काम करने के हवाले से। अवेयरनेस कैसे होगी, अब सबसे बड़ा हथियार जो इस वक्त है वो मीडिया का है। मीडिया के जरिए हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है, एनजीओस है, सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल है, और जो ओपिनियन बेस्ड जो लीडर्स हैं, आइदर वो पॉलिटिकल हों या रिलीजियस हों, उनके जरिए से हम इसकी अवेयरनेस का जो है वो काम कर सकते।
हुमैरा इश्फाक,
ये बात बहुत आम है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, एसेट क्राइम है, उसको आप अपनी तरजीहात के अंदर शामिल करें और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। फर्स्ट में जैसे रिहैब सेंटर्स होने चाहिए, उसमें सबसे पहले जो हम लोगों को चाहिए मेडिकल फर्स्ट एड, कि हर हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट एड होनी चाहिए, एसिड सर्वाइवर को प्रोवाइड की जाती है। सेकेंडली साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग, तो उसको बताया जाए कि आपकी जब सर्जरी हो जाएगी तो आप बिल्कुल आप पहले जैसे नहीं हो सकते, कुछ आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। फैमिली काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है कि एक बंदे की सर्जरी होगी, वो आपके पास आया है, तो आपने उसको कैसे डील करना है। आपने उसको फैमिली में फैमिली फंक्शंस में लेके जाना है, फैमिली सपोर्ट ग्रुप में लेके जाना है जहां पे वो पहले जाता था। अगर किसी स्कूल में बच्ची जा रही है तो उसको स्कूल में लेके जाना है, कोई मैरिज फंक्शन हो रहा है तो उसको वहां पे लेके जाना, अगर कोई जॉब कर रही है तो दोबारा वो जॉब पे जाना शुरू कर दे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें है फॉलो अप टाइम बेस्ड नीड असेसमेंट। जैसे एक चीज बिल्कुल नहीं हुई है, कोई भी केस होता है, किसी ने किसी पे एसिड फेंका है, तो एक टाइम तक एक चीज उसको चाहिए होती है, चाहे वो मेडिकल एड है, चाहे वो लीगल एड है, चाहे वो साइकोलॉजिकल एड है। तो हम लोगों को इस चीज की भी अवेयरनेस देनी है लोगों में कि आप ऑन टाइम सब कुछ करें, तो फॉलो अप नीड बेस्ड बहुत जरूरी है कि ऑन टाइम आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ग्रॉस रूट लेवल पे अवेयरनेस ही पहले हमने वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज की बहुत कमी है, रिसोर्सेज होने चाहिए लॉ और नेक्स्ट मॉनिटरी। पैसों का बहुत इशू हो रहा होता है कि हमने अगर एक सर्जरी करानी है, हॉस्पिटल जानी है, आउटरीच करनी है, तो हमारे पास जो विक्टिम है उसके पास पैसों की बहुत कमी होती है।
और मैं डॉक्टर यही है, तेजाब गर्दी के शिकार अशखास के साथ पुलिस का रवैया मुस्बत होना चाहिए। तेजाब गर्दी के वाकयात में अच्छे तरीके से शहादतों का इकट्ठा किया जाना जरूरी है। पुलिस और मेडिकल अमले का, सिर्फ मेडिकल अफिसर नहीं, पूरे अस्पताल का तावन आपस में जरूरी है। मीडिया ही होता है और सिविल सोसाइटी होती है जो कि इस एक सिंपल एक वाक्य को भी इंटरनेशनली भी इतना ज्यादा उजागर करते हैं कि बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें मजलूमों की मदद हुई है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स اس کے پاس عدالتی اختیارات ہیں، سو یہ موٹو بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ انٹروین بھی کر سکتی ہے عدالت میں، اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ عدالت میں مقدمے کا اندراج کا بھی کہہ سکتی ہے۔ تو آج کل جسٹس آف پیس کے اختیارات بھی ہر ممبر کو مل گئے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ تمام تنظیموں کو یہ نوٹ کرا دینا چاہیے کہ وہ اس ادارے کی خدمات لیں۔
ڈاکٹر محمد عثمان،
At BHU levels, we have certain deficiencies regarding acid treatment and all those patients coming for acid treatment and not getting that proper standard operating procedures not being followed there. Obviously, lack of logistic support is the prime reason. Then first aid proper is something which is lacking. Not every paramedic has that proper training for that first aid. Paramedics training and their awareness and the proper SOPs should be trained to them.
میرا نام ولی خان ہے اور میں ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کا چیئرپرسن ہوں۔
ریہیبلیٹیشن، کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن سروسز اینڈ سپورٹ شوڈ بی پارٹ آف اے لیگل اوبلیگیشن۔ یو نیڈ مور دین مینٹل اینڈ میڈیکل سپورٹ، یو آلسو نیڈ سائیکولوجیکل اینڈ اکنامک سپورٹ۔ اف اے بورڈ از ٹو بی اسٹیبلشڈ، دیٹ بورڈ شوڈ انشور دا فنڈنگ اینڈ شوڈ آلسو مانیٹر واٹ ایور از بینگ ڈن وتھ دیٹ۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کے لیے 99% کیسز پہ کلوروڈوک اور سلفوریک ایسڈ کا استعمال ہو گیا، اور اس چیز کے لیے سب سے پہلے پانی ڈال دے زیادہ میڈیکل فیسلٹی پہ جائے، وہ ایکسپرٹس ادھر ہی ہے، ہم لوگ ہوٹ میڈیکل ایکسپرٹ۔ کمیونٹی ایجوکیٹ کرنے کے لیے ڈروئنگ، کلرنگ بکس، ریڈیو میسج پہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ برن سینٹر ہے، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ وہ صرف ایمرجنسی برنز میں کٹر کریں گے، دے کین ناٹ ریپیٹ این آپریشن آن اے لانگ ٹرم۔ تو پھر یہ ہمارے ایشو ہے، اور فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے اندر وہ بھی کافی ریلیونٹ ہیلپ بھی ہے وہ لو کاسٹ کے لیے۔ پنجاب میں دی اونلی ریلیونٹ برن سینٹر از ان ملتان، اینڈ دیٹ از دا نشتار ون وچ ہیز بین ریسنٹلی بلٹ۔ اور کراچی میں سیوی برنز آف فرنٹ ہاسپٹل بھی ہے، وہ بھی کافی ڈیسنٹ ہے اینڈ ویل اکوپڈ ہے۔ اپارٹ فرام نیسکام ہاسپٹل وچ از اے ملٹری ون، ہمارے ملک میں صرف 3 زبردست برن سینٹرز موجود ہے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر which means not only a psychiatrist or a psychologist or a para counselor coming to visit the person, rehabilitation package mil sakte hai. Hamare paas Pakistan mein sirf ek private hai, acid survivors foundation ka, aur habi Multan mein burns hospital ke sath ek under construction hai. If this is happening, this will be the first rehabilitation center for acid burn victims on a public and private partnership in the world. When you're talking also about, you know, the legal officers and the policers, etc., we have tried one of the strategy. In 2012, after the law was passed in 2011, if we looked at the number of cases that were notified with ASF, sirf 1% of the cases were registered under the right FIRs. We started working with the medical legal officers, with the good police officers, with the doctors, with the lawyers, or exalbad, 71% of the cases were registered under the right FIRs.
آپ کو ہماری باتیں کیسی لگیں؟ پروگرام کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیں hrcpradio@gmail.com یا پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے ایڈریس پر۔ ایڈریس ہے 107 ٹیپو بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور۔ کائنات وقار کو اجازت دیجیے۔